नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता हीमन धर्मेंद्र का आज सुबह मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 89 वर्षीय धर्मेंद्र स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र एक ऐसी फिल्मी हस्ती और असाधारण अभिनेता थे जिन्होंने हर भूमिका को गहराई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गीता का संदेश केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरे विश्व का ग्रंथ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि गीता का संदेश लोगों को संबल और निराशा में भी आशा जगाता है। पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है।
पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। वह घटना भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए भारत गीता का देश है जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे और ध्वजारोहण में शामिल होंगे। यह समारोह मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतीक होगा। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे, जो मंदिर निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। श्री रिजिजू ने कहा कि उनकी बातचीत भारत भूटान प्रगाढ़ मैत्री और दोनों देशों के मूल्यों को दर्शाती है। श्री रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी के सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में कुंजापुरी मंदिर के पास आज एक बस के खाई में गिर जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और 13 घायल हो गए। टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
में 5 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है और 13 लोग हैं वो इंजर्ड हैं। इनमें से कुछ का इलाज SDH नरेंद्र नगर में चल रहा है और कुछ लोगों को एम्स ऋषिकेश में इलाज उनका किया जा रहा है। ये प्रारंभिक जो जानकारी आई है और जो ड्राइवर से पूछताछ की गई है, उस आधार पर लग रहा है कि शायद ब्रेक फेल हुए थे और क्योंकि वहां पर स्लोप था और टर्न था तो उस कारण से वो कंट्रोल नहीं हुई और ब्रेक फेल होने के बाद वो खाई में गिर गई थी। लेकिन इसकी विस्तृत पूरी जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चीन में ट्रांजिट के दौरान हवाई अड्डे पर रोके जाने के मामले में चीन और नई दिल्ली में चीनी पक्ष के समक्ष कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों ने कहा कि शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी इस मामले को स्थानीय स्तर पर उठाया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय क्षेत्र है और वहां के निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उसके साथ यात्रा करने का पूरा अधिकार है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने यह भी कहा कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई नागर विमानन से जुड़े शिकागो और मॉन्ट्रियल संधि का उल्लंघन है। यूरोप के नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर जिनेवा में वार्ता हुई प्रगति का स्वागत किया है। स्विट्जरलैंड में कल हुई बैठक में अमेरिका ने की 28 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा हुई। भारत ने आज लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया। ढाका में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए उसने ताइवान को 35-28 से हराया। भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से पराजित किया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।